ओ बाबा आपने कमाल कर दिया, ओ बाबा आपने कमाल कर दिया, हमारा सारा जीवन आपने खुशहाल कर दिया, हाँ खुशहाल कर दिया, हो
ओम शांति। ठंडा ठंडा बोलो, जब हम एक जैसी वृत्ति से एक ही आवाज में बोलते हैं तो वो आवाज सारे ही उसमें फैल जाता है, क्लियर सबको समझ में आ जाता है। तो हम बाबा के बच्चे रोज ही आते हैं, बाबा ने ऐसा हम लोगों को मां मंत्र पक्का करा दिया है कि तुमको रोज पढ़ना है, पढ़ो और पढ़ाओ, करो और कराओ, जो तुम सेवा करते ना वो दूसरों से भी कराओ, जीना है तो सबके लिए जीना है, तुम भी जियो तो दूसरों को भी जीने का रास्ता बताओ। तो हमारा धंधा ये है, मरना नहीं है संगम युग में, जियो और दूसरे को जीने का रास्ता बताओ, ताकि सभी अपने अपने जीवन में सुखी रहे, दुखों का नाम निशान हमारे जीवन से निकल जाए। कभी कभार कोई परिस्थिति ऐसी आ जाती है, किसी का बच्चा चला जाता है, किसी का पोतरा चला जाता है, किसी का कोई भी देह का संबंधी अपना शरीर छोड़ देता है, तो दूसरों को उनकी फीलिंग बहुत आती है, उस फीलिंग में बेचारे दुखी हो जाते हैं, कई कई मास दुखी रहते हैं, उसको याद करते करते दुखी होते रहते हैं, भाई वो आत्मा चली गई, पता नहीं कहाँ की कहाँ पहुंच गई, उसने जन्म भी ले लिया होगा, गर्भ में भी हो सकती है, और उसके पीछे हम इतना क्यों परेशान रहे। ये जो परेशानी है ना, ये हमारे दुखों का कारण है। हमको दुख भोगना है क्या? हम तो संगनवासी ब्राह्मण है, बाबा के सच्चे सच्चे बच्चे हैं, हमको जीना है और जीने का रास्ता बताना है, खुशी खुशी से रहना है, कोई भी बात में हमको दुखी नहीं होना है। आती है बातें मैं मानती हूं, परंतु दुख में दुखी नहीं होना है, ये पाठ पक्का कर दू। हो गया पक्का? आवाज नहीं आता है? हो गया पक्का? तो यहां से उठेंगे गेट तक आएंगे तो भूल जाएंगे, ऐसा काम नहीं करना है। फिर मैं दिन में पूछूंगी कि पाठ पक्का है, क्योंकि लाइफ को बनाना है, जीना है, दूसरे को जीने का रास्ता भी बताना है, तो ये जीवन हमारी बहुत ही अच्छी है, श्रेष्ठ है, श्रेष्ठ कर्म करना है। तो आप सबको देख करके हमें बहुत खुशी होती है, ऐसा स्कूल, ऐसे स्टूडेंट्स, ऐसा टाइम हर रोज, ये बड़ी विचित्र बात है, पढ़ाई रोज पढ़ो। अब पढ़ाई पढ़ते रहते ना तो अंदर शक्ति आती रहती है, जो भी अंदर में कुछ परेशानियों की बातें आती है, छोटी मोटी छोटी मोटी, वो सब परेशानियां हमारी दूर हो जाती, तो हमको परेशानियों से दूर होकर के रहना है, कभी भी परेशानी में परेशान नहीं होना है, क्योंकि दुख की दुनिया है ना, तो दुख की दुनिया में दुख की बातें तो आएंगी, ये पाठ पहले ही पक्का कर दो। हम लौकिक संबंधों में रहते हैं, अब इस संबंधों में सब तो एक जैसे नहीं चलेंगे, कोई चलेगा कोई नहीं चलेगा, कोई चला भी जाएगा कोई रूस भी जाएगा, पर तो हमको उनकी स्थिति के ऊपर अपनी स्थिति को खराब नहीं करना, उनकी स्थिति कैसी भी हो जाए लेकिन हमको अपनी स्थिति को खराब नहीं करना है। इससे क्या होगा, अंतिम जन्म हमारा सफल हो जाएगा, कोई भी बात में हम घबराएंगे नहीं, پریشان نہیں ہوں گے، بلکہ آئی ہوئی پریشانی اس کو بھی ہم دور کر دیں گے. آنے والے سب کو ہم سمجھاتے رہیں گے، وہ شکتی ہم اپنے میں بھر لیں گے. پرستھتیاں آئیں گی یہ ہم سمجھ آئیں گے، یہ میں کہہ نہیں سکتے پرستھتی آئیں گی نہیں، ایسی گارنٹی تو کسی نے لی نہیں ہے. سنسار میں آئے ہیں اور سنگم یوگ ہے، تو سنگم یوگ میں یہ سبھی باتیں آتی رہیں گی، پرنتو ہم کو سنگم یوگ میں بھی نیارا اور پیارا رہنا ہے، کس میں بھی اداس نہیں ہونا ہے، کس میں بھی گھبرانا نہیں ہے، پریشان نہیں ہونا ہے. یہ بات پکا کر دو تو سنگم کی سب گلیاں ہماری سوانی ہو جائیں گی.
ستارے بیچ میں چمکے सपना सुहाना प्यारे प्यारे बाबा के संग
सच सचमुच वो घड़ी बड़ी अद्भुत तेरे ध्यान में जब खो जाता हूँ अंबर के पार बसा है तू अंबर के पार बसा है तू पर अपने पास ही पाता हूँ देखूं मैं तुझको चिंतन में तेरी याद का दीप जले मन में एक ज्योत जगे इस जीवन में तेरी याद का दीप जले मन में मिलन का गीत मधुर मेरा रोम रोम नित गाता है तेरे अमर मिलन का गीत मधुर
चेहरा सदैव चमकता है दादी का जब भी दादी
नहीं देखो इसकी विशेषता ये जो साकार बाप के समय चक्कर लगाने में नंबर वन
थे
बाप
दादा
कहता था चक्कर लगाओ पहला नंबर आप तैयार होते थे
सुना दादी ने ठीक
है अभी भी पहला नंबर क्लास कराने में पहला नंबर संगठन में पहुंचने में हर कार्य में पहला नंबर
अभी शांत ज्यादा रहती है टिकट करने वाले शांत ज्यादा रहती है मुस्कुराती है शांत ज्यादा रहती है अभी हंसा होता ना
अभी बचपन को याद करो बीमारी को नहीं
बचपन याद करो बीमारी को नहीं
दोनों
किडनी में स्टोन हो गया
क्या
दोनों
किडनी
में स्टोन हो गया
कोई बड़ी बात नहीं
कोई बड़ी बात नहीं
आजकल ये बीमारियां तो नहीं बैठे बैठे भी हो जाता है सोते बैठते न सोना है न बैठना है चक्कर लगाना है अच्छा पाठ बजा रही
है
क्लास में क्लास में हाजिरी देना
क्लास में
हाजिरी देती हो ये बहुत अच्छा रिफ्रेश स्वयं भी रिफ्रेश औरों को भी रिफ्रेश कर ये छोड़ना नहीं हो जाएगी इसने संकल्प किया है बिना डॉक्टर के ठीक रहोगे
संकल्प किया बिना डॉक्टर के ठीक रहोगे हाँ बहुत परिवर्तन हो गया हम और जाती हूँ बिना डॉक्टर अभी क्लास भी कराती है पहले बुढ़ने सुनाती थी अभी रोज क्लास कराती है
अच्छा बेटा
ओम शांति सुन सके मैं वो बात हूँ, अव्यक्त हूँ मैं साथ हूँ, अव्यक्त हूँ मैं साथ हूँ, सब सुन सके मैं वो बात हूँ, सब सुन सके मैं वो बात हूँ। सबको दुआ तू दे तभी सबकी दुआ पाएगा, सबको दुआ तू दे तभी सबकी दुआएं पाएगा, तू सद्गुणों की सुगंध से कांटों को फूल बनाएगा, तू सद्गुणों की सुगंध से कांटों को फूल बनाएगा। सुन मेरे मीठे बच्चे, सुन सुन मेरे मीठे बच्चे, सुन किरण है मैं प्रभात हूँ, तू किरण है मैं प्रभात हूँ, सब सुन सके मैं वो बात हूँ, सब सुन सके मैं वो बात हूँ। बदला कभी लेना नहीं, खुद को बदल कर दिखलाना, तेरा बुरा कोई करे उसको गले से लगाना, तेरा बुरा कोई करे उसको गले से लगाना, तू भावना है मिलन की, तू भावना है मिलन की, मैं प्रेम की बरसात हूँ, मैं प्रेम की बरसात हूँ, सब सुन सके मैं वो बात हूँ, सब सुन सके मैं वो बात हूँ, अव्यक्त हूँ मैं साथ हूँ, अव्यक्त हूँ मैं साथ हूँ, सब सुन सके मैं वो बात हूँ, सब सुन सके मैं वो बात हूँ।
वतन की याद ने दुनिया को भुला दिया, हमें प्यार में समा लिया, है पास में बुला लिया, है पास में बुला लिया। तेरे वतन की याद ने दुनिया को भुला दिया।
बाबा ने कितनी अच्छी बातें सुना थी,
बहुत अच्छा बाबा, क्या करे बाबा, क्या करे,
अच्छे बच्चे भी है ना,
बाबा को क्या करे,
अच्छे बाप ने आप समान बनाए,
जाना है हमें अपने परम धाम, जाना है हमें अपने परम धाम, जहाँ देह न है ना देह का ज्ञान, जहाँ देह
शांति।
सुख शांति कायमी स्नेहमयी सुख शांति कायमी वरदानी कल्याणी स्नेहमयी सुख शांति कायमी स्नेहमयी सुख शांति कायमी वरदानी कल्याणी स्नेहमयी सुख
शांति कायमी
कल्याणी। घर जाना है कि अब घर जाना है, अब घर जाना है कि अब घर जाना है। आदि अंत का मंत्र यही है, सबको यही सुनाना है, अब घर जाना है कि अब घर जाना, अब घर जाना है कि अब घर जाना है।
Okay.
होना है कि अब घर जाना है, अब घर जाना है कि अब घर जाना है।
जा बाबा की अंतर द्वार।
पंचेंद्रिय का छोड़ दे बंधन, तन मन से तू हो जा समर्पण। पंचेंद्रिय का छोड़ दे बंधन, तन मन से तू हो जा समर्पण। दिव्य ज्योति
विशेष अपनी प्यारी मनोहरता देव के प्रति वतन में जाना हुआ, तो क्या देखा कि मनोहरता देव बाबा की गोद में बड़े आराम से बैठी मुस्कुरा रही थी। मैंने मुस्कुराती हुई मनोहर दादी को भी देखा, बाबा को भी देखा। बाबा भी जैसे बहुत मीठा मुस्कुरा रहा था और ऐसे लगे जैसे बाबा पूछ रहा है कि बच्ची क्या देख रही हो। तो मैं दोनों को ही देख रही थी, तो मैंने देखा कि जैसे बाबा ऐसी मुस्कुराहट से मुस्कुरा रहा था जैसे इसमें भी कोई राज छिपा हो, ऐसी राजयुक्त मुस्कुराहट बाबा की थी। तो मैंने कहा कि बाबा आपको सबने बहुत बहुत याद दिया है और मनोहर दादी को तो आज विशेष सभी ने बहुत बहुत याद प्यार दिया। सब याद करते थे उनके साथ बिताए हुए दिन, उनके द्वारा सुने हुए मीठे मीठे बोल और विशेष जब आपके चरित्र सुनाती थी, यज्ञ की हिस्ट्री सुनाती थी, ऐसा लगता था हमको वहां ही ले गई है और हम भी उसी में मगन हो जाते थे। तो मैंने कहा मनोहर दादी आप हमको छोड़ के चली आई, हम तो अब सब आपका इंतजार कर रहे थे कि अभी आई अभी आई अभी आई, और आप तो आ गई ही वतन में। तो कहती है मोहिनी वतन में बड़ा मजा है ना? आप लोग आते हो थोड़ा सा मजा लेके चले जाते हो, लेकिन बाबा ने तो मुझे बहुत मजा कराया है। और मैं बाबा से रोज कहती हूँ, बाबा अभी तो आपने मुझे बुला लिया है, अब मैं जाऊंगी नहीं, आपके साथ ही रहूंगी और साथ रह के सेवा करूंगी। तो बाबा सुन के मुस्कुरा भी रहा था, देख भी रहा था कि जैसे मनोहर दादी बड़े हक से अपने पास से बोलती थी, नहीं बाबा हम तो यहीं रहेंगे, आपके साथ सेवा करेंगे। तो मेरे को कहा कि देखो आप तो आती हो और ड्यूटी बजा के चली जाती हो, लेकिन मैं तो यहाँ आ गई हूँ तो बाबा तो मेरे को बीच बीच में बहुत सैर कराता था, बहुत कुछ दिखाता था, बहुत कुछ बताता था। तो जो हमने सुना, हमने देखा, हमने पाया, वो आपने नहीं पाया, आपको नहीं मिला। तो मैं बाबा को देख रही थी और मनोहर दादी की खुशी भी देख रही थी। तो मैंने कहा एक दिन मेरा नंबर भी आएगा मनोहर दादी, जब मैं भी बैठ जाऊंगी, फिर मैं भी नहीं जाऊंगी ना। तो ऐसे चिट चैट कर रहे थे और बाबा दोनों की चैट चैट सुन के मुस्कुरा रहा था। तो मैंने कहा बाबा आप जल्दी जल्दी एक 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 को बुला रहे हो, अभी तो हमारे पास गिनती की दादियां रह गई हैं, आप बुलाते जा रहे हो। तो बाबा ने कहा कि आप सबको वहीं रहना है क्या, अभी आप सबको आना नहीं है? वो दुनिया ज्यादा अच्छी लगती है। तो मैंने कहा वैसे तो बाबा हम सब रेडी हैं, लेकिन आप अभी बहुत जल्दी कर रहे हो इसलिए मैं पूछ रही हूं। तो बाबा ने कहा कि देखो समय नाजुक है और एडवांस पार्टी में भी पावरफुल आत्माएं चाहिए, पवित्र आत्माएं चाहिए। और इनका पार्ट और आपका पार्ट लास्ट में दोनों पार्ट चलने हैं, तो इसलिए ये नई दुनिया की स्थापना उसका फाउंडेशन अभी लग रहा है। तो फाउंडेशन ने मजबूत और पक्की पवित्र आत्माएं चाहिए। तो ये मेरे आदि रतन यज्ञ के भी आदि रतन बाबा के पास आ रहे हैं, तो सेवा के आदि रतन भी बाबा के पास आ रहे हैं। दोनों का अपने हिसाब से अपना अपना पार्ट है और दोनों का अपना पावरफुल पार्ट है। तो मैंने कहा बाबा आप बुलाते हो तो कभी बताते नहीं हो। तो मैंने कहा अगर बताऊं तो आप लोग हाँ करोगे या कारण सुनाओगे, अभी बाबा ये है, अभी बाबा वो है, अभी बाबा ऐसा, अभी बाबा ऐसा है। तो बाबा किसकी बुद्धि नहीं चलाना चाहता है कि ऐसे बुद्धि चले, लेकिन बाबा तो ये चाहता है कि इनकी स्थिति को देखकर आप आपकी स्थिति उपरांग बने। जैसे उनको कहते हो कब भी जाए, ऐसे अपनी स्थिति भी ऐसी तैयार रखो, एवर रेडी रखो जो बाबा कहे और चले आए। कहां भी किसी भी वस्तु में किसी भी व्यक्ति में किसी भी सेवा में अपनी बुद्धि ना जाए, सब तरफ से निर्संकल्प निर्बंधन। तो अभी बाबा चाहता है कि मेरे बच्चे निर्संकल्प भी बने और निर्बंधन भी बने, कि किसी प्रकार का बंधन कोई भी संकल्प उनकी अंतिम स्थिति में अपनी तरफ खींचे नहीं। इतना अपने आप को तैयार करना है और तैयारी का यही समय है कि एक तरफ अति होती जाएगी और दूसरी तरफ अब बच्चों की सेवा की वृद्धि होती जाएगी। जो थोड़ी बहुत सेवा रह गई है, कई अभी ऐसी आत्माएं हैं जिनको संदेश नहीं मिला है, वो भी पूरा हो जाएगा बहुत जल्दी। तो इसलिए बाबा तो बच्चों के आगे पेपर कहे दृश्य कहे, ये दिखाता है कि बच्चे भी अपनी स्थिति को अचल अडोल एक रस बनाए। बच्चों का संगठन बहुत अच्छा है, आपस में प्यार बहुत अच्छा है, तो बाबा बच्चों का संगठन बच्चों का प्यार देखकर बहुत खुश होता है। तो ऐसे मीठे बोल बाबा बोल रहे थे और मनोहर दादी बड़े प्यार से सुन रही थी। तो मैंने कहा दादी आपके लौकिक संबंधी भी बहुत आए हैं और अलौकिक संबंधी भी बहुत आए हैं, आपका सबसे प्यार है ना, सबसे आप मिक्स हो जाती थी ना, तो सबका प्यार आपका प्यार सबको यहाँ खींच लाया है और अंतिम यात्रा में आपके ये सब साथी बने और बड़े प्यार से सबने आपको विदाई दी। ये विदाई दी है फिर मिलने के लिए, तो आपको इनके प्रति कुछ कहना है? दादी मुस्कुराई, कहती है प्यार को प्यार खींचता है ना, मेरा भी तो प्यार सबसे है ना, तो प्यार में बंधे हुए सब चले आए। तो मैंने कहा लौकिक को कुछ कहना है? बोला प्यार तो है, खींचे तो चले आए, दादी दादी करते हैं, लेकिन उनको कहना कि दादी से जिसका प्यार है ना उससे प्यार करो, सुना, उससे प्यार करो, उससे प्यार करेंगे ना तो दादी का देखा ना कि एक से प्यार होने के कारण अनेकों का प्यार आया है। तो आप भी जिससे दादी का प्यार था ना उससे प्यार करो, ऐसा संबंध जोड़ के जाओ जो ये घर ये अलौकिक संबंध भूले नहीं और ये संबंध अंत तक याद दिलाएगा। ये ऐसा संबंध है जो अंत तक साथ निभाएगा। तो इसलिए उन सबको कहना कि आए तो बहुत अच्छा, प्रीत की रीत निभाई, लेकिन अब ये रीत भी निभाओ, है ना? तो निभाएंगे ना, कौन है संबंधी? हाथ उठाओ जरा। हाँ दादा बैठा, ये बैठा है सब। हाँ है? अच्छा फिर मासी जैसी थी? हाँ वैसी बनना मासी जैसी। हाँ जरूर बनना। सुना, यहाँ से मासी ने जिससे प्यार किया है ना, वो प्यार तुम अपने साथ लेके जाना, और प्यार को सदा कायम रखना ना, कि मासी ने अपना जीवन कितना ऊंचा बनाया, कितना श्रेष्ठ बनाया, तो हमें भी ऐसे जीवन को बनाना है कि जैसे परमात्मा के प्यार में, परमात्मा के संबंध में मासी रही, बहन रही, वैसे मुझे भी रहना है। बोलो सब रहना है? दादा बोलो, हैं? पक्का? देख लो इतने सारे लोग आपको देख रहे हैं, आपका हाथ देख रहे हैं, हैं? हाँ बस हिम्मत आपकी और मदद बाप की, है ना? तो इस रीति से मनोहर दादी ने भी अपने लौकिक को भी और अलौकिक परिवार को भी बहुत बहुत याद प्यार दिया, और कहा कि मेरी सभी सखियों को मेरी बहुत बहुत दिल से प्यार देना, दुलार देना, याद देना, और कहना कि जैसे हम यहाँ संगठन करते थे ना, अभी हम ऊपर वतन में भी ऐसे ही संगठन कर रही हूँ। तो मैंने कहा कि आप नीचे आओ एक बार, सबसे संगठन करके जाओ, आप अपने वतन का अनुभव सबको सुना के जाओ। तो बाबा की ओर देखने लगी कि अब तो बाबा के पास हूँ, बाबा के हाथ में हूँ, बाबा मुझे भेजेगा तो मैं अपना अनुभव सुनाने जरूर आऊंगी। तो ऐसे चिट चैट कर रहे थे, फिर बाबा ने कहा अरे बच्ची को भोग नहीं खिलाएगी, भोजन नहीं खिलाएंगी? तो मैंने कहा कि बाबा मनोहर दादी को जो पसंद था ना, वो मनोहर दादी के लिए लाए हैं, और यज्ञ का ब्रह्मा भोजन आपके लिए लाए हैं, दो थालियां हैं। तो बाबा ने कहा कि बच्ची को तो दोनों खिलाऊंगा। तो मनोहर दादी कहती मैं भी अपना भोग बाबा को खिलाऊंगी। जैसे चिट चैट करते बाबा ने अपने हाथों से मनोहर दादी को सब प्रकार का भोजन स्वीकार कराया, और फिर मनोहर दादी ने कहा कि हमारी दादी जानकी को, दादी गुलजार को, दादी रतन मोहिनी को, सभी दादियों को, निर्वैर भाई, चंद्रास भाई, अमितन भाई, मृत्युंजय भाई, अशोक भाई, गीता बहन, सारे ज्ञान सरोवर के भाई बहनों को, सबको मेरी बहुत बहुत याद प्यार देना, और कहना कि मैं दूर नहीं हूँ, साथ हूँ, अंत तक साथी बन के चलूंगी, साथी बन के रही थी और साथी रहूंगी। तो जैसे नाम एक एक के लिए जा रही थी, फिर थोड़ी देर बाद के डॉक्टर प्रताप को भी याद देना। मैंने कहा अच्छा और किसको याद दे दादी? दादी के नाम की माला मैं जपूंगी क्या? जो भी मेरी सखी आई हैं, उन सखियों को भी याद देना, और सभी भाइयों को भी याद देना, और जो भी जहां से आए हैं सभी बहनें, सब उन सबको बहुत बहुत याद प्यार देना। तो ऐसे याद प्यार लेते, याद प्यार देते, फिर मैं वापस आ गई। ओम शांति,
ओम शांति। संदेश तो आपने सुन लिए है, हम तो अमृत वेले गए थे, तो अमृत वेले बाबा ने जो सुनाया वो सुनाते हैं। तो जब मैं गई और जाने का जो सदा के मुआफिक होता है वो आप सबको अनुभव हो चुका होगा। तो जब मैं बाबा के बाहों में समा गई तो उस समय मनोहर बहन भी वहां पहुंच गई। तो बाबा के बाहों में हम दोनों ही ऐसे समा गए और बाबा हमें बाहों के झूले में जैसे झूलाता है ना, ऐसे ही झूला रहा था दोनों को ही। तो मनोहर दादी ने कहा कि आज तो मैं आपके समान पहुंच गई। हमने कहा भाई हमें भी खुशी है आप हमारे समान अनुभव कर रही हो। तो बाबा ने कहा कि मैंने इस बच्ची की सब आशय पूरी कर दी है, क्योंकि इसमें एक विशेषता रही है। तो मैं भी इंटरेस्ट से सुनने लगी क्या बाबा कहता है। तो बाबा ने कहा एक तो बच्ची की विशेषता ये है कि जब भी बाबा सेवा के लिए कहता मुरली में तो पहले यही तैयार होके जाती थी, चाहे करनाल हो छोटा हो चाहे बड़ा हो। दिल्ली में भी बाबा ने कहा फाउंडेशन में जो तपस्या की जमुना किनारे उसमें भी ये पहुंची थी। तो बाबा देखता है कि जो सदा बाबा की श्रीमत पर बाबा कहे नहीं कहे लेकिन इशारा ही समझ करके ये चली जाती थी, प्रोग्राम बना लेती थी। तो बाबा ने कहा इसकी ये विशेषता ऑल राउंड भी और एवर रेडी भी। ऐसे नहीं देखती थी कि ये छोटा गांव है ये बड़ा गांव है, ये निमंत्रण में जाऊं नहीं जाऊं नहीं। फिर बाबा ने कहा मनोहर को देख के कहा तुमको याद है कि बाबा कैसे ऑर्डर करता था? तो मनोहर बहन तो अनुभवी थी तो वो तो बाबा को ऐसे जैसे प्यार में आके बाबा से गले में समा जाती थी। तो बाबा ने कहा बच्ची की ट्रायल मैंने बहुत की है। एक बारी बच्ची को हम जहां रहते थे ना पाकिस्तान में कुंज भवन में मामा के साथ रहते थे, तो उसके नजदीक ही स्टेशन एक आती थी सदर बाजार था शायद नाम। तो बाबा समझो हमारा जो मकान था उसके बाद 5-10 मिनट के बाद स्टेशन आती थी और 10-10 मिनट के करीब ठहरती थी। तो बाबा ऑर्डर करता था, देखता था तो ये बच्ची क्या कहती है जवाब क्या देती है। तो बाबा क्या कहता था तो ये गई ना ट्रेन तुम तैयार हो के यहां जाओ। तो बाबा हम तो सब चले ही जाते थे, बाबा का ऑर्डर कितना बढ़िया है। तो बाबा ने कहा बच्ची ने ऐसे ऑर्डर भी माना है तो जी हाजिर बच्ची है तो हजूर भी उसके लिए हाजिर। तो इस बच्ची की विशेषता है एक ऑलराउंडर और दूसरा एडजस्ट करने की बहुत उसके संस्कार है। किसी में भी हमें बाबा ने कहा तुम्हें याद है कितनी एडजस्ट पावर है इसमें? हमने कहा बाबा बहुत पावर है। क्यों? कि बाबा जब आता था ना तो छोटा सा कमरा था, मनोहर दादी जहां रहती थी छोटा सा कमरा था। अभी मोहिनी बहन वहां रहती है तो मोहिनी बहन को तो एक थोड़ा एडिशन मिला है, लेकिन मनोहर दादी के साथ हम और मनोहर दादी दोनों रहती थी और बाबा आता जाता था। तो एडजस्ट करने की मैंने भी देखा, नहीं तो बाबा आता है तो टाइम पर मुझे नींद भी चाहिए या टाइम पर सब कुछ सेल्वेशन भी चाहिए, तो ये कभी भी अपना कारण नहीं बताती थी, एडजस्ट कर लेती थी। कहां भी बाहर चली जाएंगी तुम आराम करो, आवाज नहीं आवे पैरा देती थी तो कोई आवाज और भी नहीं करे। तो मैंने कहा बाबा मुझे तो इसका अनुभव है कि इतने छोटे, और वहां बाथरूम भी नहीं थी तभी, हम दादी के बाथरूम में नहाने जाते थे, तो भी कितना साल मनोहर बहन और हम इकट्ठे रहे, तो बाबा ने कहा इसमें एडजस्ट करने की और ऑलराउंडर सेवादारी की क्वालिफिकेशन जो है, इसी ने बाबा को बच्ची के ऊपर मोहित कर दिए। तो बाबा ने कहा पता है मैंने क्या इसका फल दिया इसको, ये भले लास्ट समय में कितना दिन वो बेहोशी में रही, लेकिन वतन में मैं बुलाता था और इसकी दिल थी, तो बाबा मुझे ऐसे अनुभव कराओ जो किसी ने नहीं किया हो। तो बच्ची की आश जो थी ना, वो बाबा इनकी जी हाँ जी हाँ हाँ जी का पाठ जो पढ़ा है ना इसने, इसीलिए बाबा ने भी कहा जो बच्ची तुम चाहो वो करूंगा। तो बाबा ने बहुत महिमा की इसकी, और प्रैक्टिकल हम लोगों ने भी देखा, तो एडजस्ट करने की तो पावर थी। और बूढ़ा हो बच्चा हो किसी से भी मिक्स हो जाती थी, हम हंसी में कहते थे जैसे आलू होता है ना, सब सब्जियों में मिक्स हो जाता है, ऐसे हमारी मनोहर बहन जो है ना वो भी सभी से, छोटे बच्चे से, यूथ से, बूढ़े से, सभी से मिक्स ऐसे हो जाए। तो बाबा ने कहा तीसरी क्वालिफिकेशन इसकी है कि रमणीक रहती थी, सूखा नहीं रहती थी, जैसे सूखा गन्ना होता है ना ऐसा नहीं रहती थी, ये रमणीक रहती थी, भले बीमार भी थी हो रही, लेकिन वो नहीं कोई दर्द की शिकल हो या वो फीलिंग इसको नहीं थी, भले तबियत इसकी सेवा कम कर सकी, लेकिन फिर भी अंत तक इस बच्ची ने अपना पार्ट बहुत अच्छा बजाया। तो बाबा ने कहा तो बच्ची सभी को यही कहना, मनोहर बहन तो मुस्कुरा रही थी, आपको पता है वो मुस्कुराती कैसे है, तो बाबा से जैसे बाबा बीच बीच में बाबा को बाबा आप तो ऐसे ही कहे, बाबा आप तो ऐसे ही कहते, जैसे यहां भी करती थी ना ऐसे ही बाबा से भी कर रही थी। फिर उसके बाद बाबा ने बोला बच्ची ये क्वालिफिकेशन, एक ऑलराउंड सेवादारी और दूसरा एडजस्ट करने की पावर और तीसरा सबसे मुस्कुराते हुए रमणीक रूप में मिलना या संबंध में आना, ये तीन जो बच्ची के गुण थे, इसीलिए बाबा ने जल्दी बुलाने का, जैसे बेहोश थी ना तो बाबा को कहा नहीं मुझे और भी दिन रहना है, और भी दिन आना है, तो बाबा ने इतने दिन इसको रखा, कहा जी हाँ किया है तो बाबा ने भी जी हाँ किया। अभी सभी को यही कहना कि दादी से प्यार तो था ही सभी का, अभी भी है, लेकिन जो हर एक बच्चे में विशेषताएं हैं, तो आपका प्यार किससे है, विशेषताओं से, तो विशेष आत्माओं हर एक में विशेषता है ही है, कोई भी लास्ट धना जो मेरा है उसमें भी कोई न कोई विशेषता होती है, तो विशेषता देखो, विशेष बनो, और विशेषता देख करके विशेष बनने से हर जन्म में हर सारे कल्प में विशेष पाठ बजाने वाले रहेंगे। ऐसे उनकी महिमा कर रहा था, और वो भी बीच बीच में ऐसे जैसे बाबा को गले लग जाती थी, हाथ में पकड़ लेती थी, मतलब हम उनकी सीन देख रही थी साखियों के क्या करती है। तो बाबा ने कहा सब हाँ जी हाँ जी, ऑल राउंड सेवादारी अगर बनेंगे तो बाबा बीमारी में भी घुमाएंगे, दुख का अनुभव होने नहीं देंगे। भले बेहोश थी लेकिन मेरे पास तो आसक्ति थी ना, आत्मा तो थी ना, तो मैं इसको खूब घुमाया है। जो विदेश का शहर भी नहीं देखे थे ना, वो भी मैंने घुमाया है इनको। तो बच्ची की जो भी दिल थी ना रही हुई, वो सब ऑल राउंड जैसे ये रही, वैसे ऑल राउंड इनकी जो इच्छाएं थी वो बाबा ने पूर्ण की। और वैसे भी न्यारी और प्यारी तो थी ही, तो बाबा भी न्यारा और प्यारा है, तो बच्ची को देख करके मैंने बहुत खुश किया है। फिर वो कहने लगी बाबा आपने हमको पहाड़ी पर ले जा करके बहुत अच्छा अनुभव कराया, बीमारी के दिनों में बाबा ने किया। तो बाबा ने कहा बच्ची क्या याद आ रहा है? तो मैंने कहा बाबा आपने इनको क्या अनुभव कराया? तो बाबा कहा चलो मैं ले चलता हूँ, तुमको भी दिखाता हूँ क्या कराया। तो बाबा पहाड़ी पर जैसे ले जाता है ना लाइट की पहाड़ी पर, ऐसे हम दोनों को ऐसे बहाम में लेके ऐसे ही बाबा ले चल रहा था। और दोनों को लेकर के वहाँ पहाड़ी पर, तो वहाँ तो बाबा कहते हैं ये ताली बजाता है और ऊपर पहुंच जाते हैं। तो हम दोनों ही ऊपर पहुंच गए, लाइट की पहाड़ी थी और उसमें बाबा ने सकाश कैसे दो, विशेष दुनिया जो दुखी है अशांत है उनको सकाश कैसे दो? क्यों? कि बाबा ने कहा सभी आपके पास सन्मुख पहुंचे वो थोड़ा बहुत मुश्किल है, लेकिन संदेश सभी को आपको देना है तो उसकी विधि जहां मुख से आप पहुंच सको, बाबा की पहचान दो वहां मुख से, अगर मुख से वो भी नहीं पहुंच सके आप भी नहीं पहुंच सको तो मनसा द्वारा सकाश देना, ये बहुत जल्दी काम पूरा हो जाएगा। जैसे टीवी होती है ना, टीवी द्वारा सहज ही सभी देख सकते हैं ना, कहाँ भी है लेकिन देख सकते हैं सुन सकते हैं, ऐसे आपकी साइलेंस के पावर की सकाश जो है वो बहुतों को जहाँ वो पहुँच नहीं सकते हैं, आप भी पहुँच नहीं सकते हो, वहाँ मनसा साइलेंस की पावर से सकाश पहुंचा सकते हो। जैसे साइंस वाले जो है वो अपने यंत्रों द्वारा कहाँ का कहाँ पहुंच जाते हैं ना, तो आप साइलेंस के पावर से लोगों को संदेश जरूर देंगी, उनको सकाश मिलेगी और बाबा के तरफ आकर्षण आएंगी। जैसे शुरू में बाबा ने कहा तुमको याद है बच्चों को, तो घर बैठे कितनों को साक्षात्कार हुआ था ब्रह्मा बाबा को, पहचानते भी नहीं थे। फिर जब कहां से भी चित्र देखा वो देखा, कोई बताता था ऐसे सफेद ड्रेस थी ये था, तो कहते थे हाँ ऐसा ही था, चित्र तो इतना उन दिनों में नहीं निकलते थे, अभी तो ज्यादा चित्र निकलते हैं, लेकिन बाबा के होते इतने चित्र नहीं छपते थे। तो बाबा ने कहा उनको दिखाई देगा वहां सफेद वस्त्रधारी लाइट के बीच में फरिश्ते रूप में बाबा का साक्षात्कार होगा और आपकी सकाश मिलेंगी, उस सकाश से सुख और शांति का अनुभव करेंगे। तो मनोहर बहन कहती थी मैं तो इतने दिन मुझे नहीं, हमने कहा मनोहर बहन आपको कुछ भी नहीं फील होता था? कहती थी फील क्या होता था, मैं तो बोझ मनाती रहती थी, मेरे को कुछ फील नहीं हुआ था। और मैंने बाबा से रिक्वेस्ट की तो मुझे और दिन रखो, तो बाबा ने वो भी मेरी पूरी की और अभी सकाश देने का जो बाबा कहते हैं, तो मैंने कहा अभी तो आप जन्म लेंगी, गर्भ में जाएंगी, कैसे सकाश देंगी। तो कहा हम जन्म लेते हैं ना, एडवांस पार्टी का राज बाबा ने बताया। तो अमृत वेले का एडवांस पार्टी के जो भी मुख्य गए हैं, उन्होंने अमृत वेले का जो अभ्यास है ना, उनकी आदत अब जन्म लेते भी है तो अमृत वेले जो है उनको बिल्कुल ही जैसे बैठते थे ना अमृत वेले सकाश देने, तो उनको वाइब्रेशन ऐसे आता जो उनकी स्टेज अमृत वेले तो माँ बाप वगैरह सब सोए हुए होते हैं ना, लेकिन ये ड्रामा अनुसार जो अमृत वेले का अभ्यास है उसमें बहुत अच्छे अच्छे अनुभव करते हैं। भले ये याद नहीं दिलाता है बाबा तो तुम ब्रह्मा कुमारी थी या ब्रह्मा कुमारियों के आश्रम यहाँ है, ये याद नहीं दिलाता क्योंकि इनका पाठ अलग है। लेकिन अमृत वेले मेजॉरिटी जिनों का अमृत वेले का अनुभव है, ये लेटे लेटे भी ये वहां वतन में पहुंचते हैं और वतन में सब सैर भी करते हैं और सकाश भी देते। तो ये बाबा ने सुनाया और फिर मनोहर दादी और हम दोनों ही बाबा से नीचे उतरे, फिर कमरे में गए क्योंकि अमृत वेला तो फ्री टाइम था ना, तो वहां कमरे में गए, दोनों को बाबा ने जैसे साकार में बाबा लेटता था ना गद्दी पर, और दोनों तरफ हम ऐसे बाबा के तकिए से ऐसे लेट गए और बाबा बहुत प्यार कर रहा था। कहा बच्ची अभी अपना पाठ बजाने जाओ, ऐसे करके ये था अमृत वेले।
सभी बोलो ओम शांति। अच्छा, गुलजार दादी ने अच्छी अच्छी मीठी मीठी बातें इमर्ज कराई है और आज बाबा ने कहा है मुरली में साक्षात्कार होते रहेंगे। अभी तो अभी बाबा ने जो दिल में भरा है ना, हमारे अंदर भरा है, जो प्राप्ति हुई है तो दिल की भावना हमने देखा है, बाबा ने इतनी दिल में भावना भर दी है, जो हमको मिला है ना सबको मिले। ये हमारी मनोहर दादी की खूबी, वो हमारी आपस में भी संबंध में एक तो से इतनी मित्रता, इतना प्यार। जब हम एक यात्रा के राही है, पापा के साथ साथ चले हैं और गारंटी है 84 जन्म साथ साथ होंगे, तो ये तो हमारा वायदा तो क्या पक्का है। दादी और मनोहर दादी, ये सब दादियां जो है ना, सब जो दादियां जिसको कहते हो ना, तो हमें इसमें जो अनुभव है, शिव बाबा ब्रह्मा बाबा में आया, हम बाबा दोनों के बाप के सामने आ गए। हमने ये पता नहीं था शिव बाबा अलग है ब्रह्मा बाबा अलग है, पीछे समझाना पड़ता है लोगों को। बाकी हम तो बस बाबा के पास आ गए, किसे पूछा भी नहीं, किसने हमारे से पूछा क्यों जा रहे हो, तुम जानो तुम्हारा काम जाने, हम तो अपने बाबा के पास आ गए। तो ऐसे जो धक्के से झाटकू है ना, तो झाटकू पर जैसे बाबा कहते धक्के से जो स्वाहा करने वाले हैं ना, उसमें हम साथी रहे हैं। दिल कहता है सब ऐसे साथी बन जाए, दादी जी है ना, सब ऐसे साथी झट को बन जाए तो ये सुख लेवे और सुख देवे। ओके समझा, ओम शांति दिल से बोलो, काम चलाओ नहीं बोलो, ओम शांति ओम शांति। ओके थैंक यू, बोलो।
अभी निर्वैल भाई द्वारा
डबल फॉरेनर्स ने बहुतों के पत्र आए हैं दादी के प्रति, बहुत प्यारा भरा पत्र लिखा है सबने कहा है। हमारी एक बहन खास पुरानी है, 20 साल पहले दादी गुलजार से, दादी मनोहर से मिली, दादी ने उनसे सारा हाल चाल पूछा। फिर पूछा, तुमको क्या अच्छा लगता है? कहा, मुझे साकार मूली बड़ी अच्छी लगती है। कहती है, ऐसा मेरे को भला है बताया, तब से लेकर के मेरा बहुत बहुत साकार मूली से इतना प्यार है, जिसमें जीवन में मुझे बहुत फायदा मिला है। ऐसे बहुतों ने अच्छे अच्छे अनुभव लिखे मनोहर दादी के। ओके, सबके तरफ मनोहर सबने जो यादगार लिखा है मनोहर दादी के लिए, सबको बता रही हूँ। ओके,
बताओ।
ओम शांति। मनोहर दादी की मनोहर कहानी हम लोगों ने एक बार नहीं बहुत बार सुनी, ज्ञान में आए 50 साल पहले, और पहले पहले बॉम्बे में सुनी। कहानी सुना करके ही बाबा के समीप ले आती थी हम सबको, और इसलिए सारे विश्व से चारों तरफ से दादी के प्रति कई ईमेल आए और उसके साथ साथ फोन भी आए हैं। दादी ने जिनकी सेवा की हुई है खुद आ नहीं पा रहे हैं, लेकिन बड़े बड़े जज, सुप्रीम कोर्ट के, हाई कोर्ट के, और भी कई ऑफिसर्स, और हमारे जो खास रमेश भाई न्यूजीलैंड से, दयाल भाई, ऐसे और भी कई जगह से फोन आए, और उसमें भी खास मैं तो देख रहा हूं दादी से सभी का इतना प्यार। लौकिक परिवार वालों का तो सुना आपने, उनको देखा भी, और अलौकिक परिवार के भी देखो, जोन के इंचार्ज हमारे भाई बहने, आशा बहन भी पहुंची हैं बॉम्बे से, और हमारी सरला दीदी, सब आकर के देखो, बड़ी बड़ी बहने और बड़े बड़े भाई पहुंचे हैं, और विदेश के जो भाई बहने यहां पर हैं, जैसे दादी ने जिम भाई का नाम लिया, तो जो दादी के प्रति जिन सभी का दिल से प्यार, वो सब यहां है। लेकिन सबका मतलब ये नहीं जो आप शरीरधारी यहां बैठे हैं, सारे विश्व से लाखों भाई बहने खास तपस्या की सभी ने कि आज दादी का अंतिम संस्कार है, तो सभी जगह पर 3-3 घंटे का मेडिटेशन का प्रोग्राम, और फिर यज्ञ की रस्मों रिवाज के हिसाब से उनके प्रति ये गुरुवार, कल नहीं अगले गुरुवार, सभी सेवा केंद्रों पर खास उनके निमित्त श्रद्धांजलि सभा और ब्रह्मा भोजन का विशेष आयोजन है, और उसके साथ साथ हमारे मधुबन में यहां पर हमारे जो आबू निवासी हैं उन सब के लिए खास जो 13वां दिन है 29 तारीख, उस दिन विशेष यहां पर कार्यक्रम रखा जाएगा और उनको भी ब्रह्मा भोजन का निमंत्रण दिया जाएगा। बाकी इसके साथ साथ जो उनके सेवा में निमित्त भाई बहने रहे, उन्होंने भी बहुत दिल से सेवा की, बाघ बहन और शीला बहन, और इनके साथ में दूसरी एक बहन छोटी, और उनके रथवान दो भाई, उन्होंने भी बहुत सेवा की, और खास तो दादी का जो अभी सबने, बाबा ने भी उनकी विशेषता सुनाई मोहिनी बहन के द्वारा, गुलजार दादी जी ने जो संदेश सुनाया, सभी वो लाइट की पहाड़ी पर आप भी सब पहुंच गए होंगे, जानकी दादी ने भी सुनाया, तो उनकी विशेषता हम यही देखते हैं कि हर एक को उन्होंने बाबा के नजदीक लाने के लिए बहुत बहुत चारों ही सब्जेक्ट ज्ञान के हिसाब से भी बहुत गहराई में ले जाती थी, योग का इतना सुंदर अभ्यास कराती। जो हमारे योग शिविर में आने वाले वीआईपीज आईपीज अनेक हैं जिनकी सेवा दादी ने बहुत अच्छी की हुई और वो उनको कभी भूलते नहीं। और जितने भी बाबा के बच्चे सेवा केंद्रों से यहां आते हैं उनको भी तपस्या कैसे करनी और अव्यक्त फरिश्तापन का अनुभव कैसे करना, वो दादी ने बहुत अभ्यास कराया। और जैसे बताया रमणीकता की, तो वो मूर्ति थी और उस रमणीकता के कारण भी सबको ये वासना मिलती थी। सत्युग में तो सखे सखी के रूप में होंगे, लेकिन यहां पर भी कैसे ईश्वरी परिवार में जो ईश्वरी ज्ञान मिलता है, ये कोई रूखा सूखा ज्ञान नहीं है, बहुत रमणीक ज्ञान है। तो सभी आज के दिन उनको विशेष दिल से याद करते हुए अपनी श्रद्धांजलि भी अर्पित करते हैं और फिर साथ में उनके भविष्य के पाठ के बारे में भी, वो तो फिर इंतजार करेंगे, बाबा खुद ही बताएंगे आगे उनका क्या पाठ है। सभी को इच्छा रहती है, ये विशेषता खास वर्तमान को, पास्ट को और भविष्य को जानने की, ईश्वरी ज्ञान के द्वारा ही हम लोग जान पाते हैं, बाबा के द्वारा ही जान पाते हैं और किसी के द्वारा जान नहीं पाते हैं। तो बहुत खुशी की बात है कि दादी ने जैसा न्यारा और प्यारापन का पाठ बजाया, बड़ी दादी ने भी और फिर सभी बड़ी दादियों का ऐसा पाठ, उसमें मनोहर दादी का भी विशेष पाठ रहा है। हमारे अमीरचंद भाई जो सुना रहे थे, पहले पहले दादी ने उनको ज्ञान दिया, तो वो भी देखो आज सवेरे पहुंच गए यहां, अभी यहां रहेंगे। तो उनसे मैंने रिक्वेस्ट किया है कि अभी 3 दिन आप मधुबन में भी अनुभव आपने सुनाना, ज्ञान सरोवर में भी सुनाना और शांतिवन में भी सुनाना, ताकि दादी जी के बारे में और भी जानकारी अधिक से अधिक सबको मिले, उनकी विशेषताओं की, उनकी सेवा की, खास जो उन्होंने चारों तरफ चक्कर लगा के बहुत सेवा की, और उनकी सिंप्लिसिटी और उसके साथ में इतने उच्च आदर्श उनके जो थे, वो हम सबको सदा आगे बढ़ाते रहेंगे और उनकी याद हम सबके दिल में सदा समाई रहेगी। ओम शांति।
विश्व मंच पर सबसे सुंदर अभिनय कर किया प्रस्थान, उदाहरण बन अमर रहेगा तप त्याग और बलिदान, सच्ची श्रद्धांजलि यही जो कहा वो कर दिखलाए, बन जाए गुणवान तुम्हें सा, मात्र नहीं गुण गाए। सुनी यज्ञ की है मनोहर कहानी, उदादे मनोहर तुम्हारी जुबानी, सुनी यज्ञ की है मनोहर कहानी, उदादे मनोहर तुम्हारे जुबानी, जीवंत हो जाता इतिहास सारा, सुनाती थी यूं जिसका कोई नसानी, सुनाओ और भी चुप क्यों हुई तुम, कदम रुक गए क्यों, आ चलते चलते बड़े शौक से सुन रहा था जमाना, तुम ही सो गए दास्तां कहते कहते बड़े शौक से सुन रहा था जमाना तुम ही सो गए दास्तां कहते कहते चली बाबा के संग बनकर के साया रही दादियों में अलग ना दिखाया सदा मुस्कुराते हमने थपाया लगा मुस्कुराने जो भी पास आया हरी ने हरी पीड़ा सबके हृदय की सदा मुस्कुराते सदा हंसते हंसते बड़े शौक से सुन रहा था जमाना तुम ही सो गए दास्तां कहते कहते बड़े शौक से सुन रहा था जमाना तुम ही सो गए दास्तां कहते कहते वो गौरी शंकर मंदिर की बातें वो जमुना का कंठा वो निर्भीक रातें वो गौरी शंकर मंदिर की बातें वो जमुना का कंठा वो निर्भीक रातें पार्टी कलाना मिलन मुलाकातें मनोहर पार्टी की वो मीठी बातें ओ हर हर गंगे किया जग को पावन हरिद्वार पर रहते या बहते बहते बड़े शौक से सुन रहा था जमाना तुम ही सो गए दास्तां कहते कहते तुम ही सो गए दास्तां कहते कहते
भारत की भूमि पर एक दिव्य पुरुष ने जन्म लिया भारत की भूमि पर एक दिव्य पुरुष ने जन्म लिया नवयुग का निर्माण कराने नवयुग का निर्माण कराने शिव ने जिन में स्थान लिया भारत की भूमि पर एक दिव्य पुरुष ने जन्म लिया भारत की भूमि पर
ओम शांति ओम शांति ओम शांति ओ शांति ओम शांति परम पूज्य परम पिता परमात्मा की प्यारी संतान मेरे मीठे मीठे भाइयों और मेरी मीठी मीठी बहनों अथवा माताओं मैं आप सबको अंदर ही अंदर बहुत ही भाग्यशाली समझती हूं आप सचमुच इस स्थान पर अपना अपना भाग्य लेकर के आए हो बिना भाग्य के इस स्थान पर कोई का आना नहीं होता है। ये कोई साधारण रीति से घूमने का स्थान नहीं है, कोई मंदिर गुरुद्वारा भी नहीं है, यहाँ कोई कीर्तननाद भी नहीं होता है। परंतु ये कौन सा स्थान है? एक विचित्र दिव्य और अलौकिक स्थान है जिसको हम रूहानी विद्यालय कहते हैं। इस रूहानी विद्यालय के अंदर हमको कौन सी पहचान मिलती है, कौन सी विद्या मिलती है, कौन सी शिक्षा मिलती है? तो हम जानते हैं कि संसार में विद्यालय बहुत हैं जिससे इंजीनियर डॉक्टर बैरिस्टर आदि बन करके निकलते हैं, परंतु ये एक विचित्र दिव्य अलौकिक विद्यालय है जिससे हम पढ़ाई पढ़ करके मानुष से देवता बन करके निकलते हैं। तो आप सभी ऐसे विद्यालय में आए हैं जहाँ के विद्या से आप निश्चय जानिए कि इस विद्या को जो रोज पढ़ेगा सुनेगा वो देवता तो बन ही जाएगा। तो आप ऐसे सुंदर और सतोगुणी स्थान पर आप आए हैं जहाँ की शिक्षा से आपको सुनते सुनते भी इतना अच्छा लगता होगा कि हम बहनों के भाषण सुनते ही रहें। सुनते सुनते ही मन शीतल हो जाता है, मन प्रेम में भरपूर हो जाता है और मन रियलाइज करता है, अपने आप को देखने का एक दर्पण मिल जाता है। दर्पण में क्या होता है, मुखरा हम देख सकते हैं, परंतु ये ज्ञान का दर्पण, ज्ञान ऐसा सुंदर मिलता है जिससे हम अपने आप को पहचान सकते हैं, अपने गुण और अवगुणों को देख सकते हैं, अपना योग परमात्मा से लगा सकते हैं और परम पिता परमात्मा से सुख और शांति का वर्षा पा सकते हैं। तो ऐसे विद्यालय के अंदर आना भी एक बहुत बड़े भाग्य की बात है। आप अपने भाग्य को नहीं जानते हो लेकिन मैं जानती हूँ, क्योंकि भगवान ने ये दिव्य दृष्टि दी है कि इस स्थान पर कौन कौन आ सकते हैं। भगवान के महावाक्य है कि मेरे जो सच्चे सच्चे भक्त होंगे, जिन्होंने बहुत काल से भक्ति की हुई होंगी, वो ही मेरे पास ज्ञान अमृत पीने के लिए आ सकते हैं। तो आपको भी कल तक तो पता नहीं था, कल परसों तक आपको कुछ पता नहीं था, लेकिन आपका आना ये सिद्ध करता है कि प्रभु के आप पुराने भक्त हो, बहुत काल की भक्ति की हुई है। उसका फल देने के लिए बाप धरा पर आकर के हम बच्चों को गति और सदगति का फल देते हैं। कैसे देते हैं, कैसे वो आते हैं, एक बहुत विचित्र अनुभव है जो बताने से भी जल्दी किसी के विश्वास में नहीं आ सकता है, क्योंकि ये आंखों से देखने की भी बात है। तो मुझे मेरे जीवन में सौभाग्य मिला जो मैंने इन आंखों से बाबा ब्रह्मा के अंदर शिव परमात्मा ने कैसे गुप्त में प्रवेश करके ये महान कार्य कराया, इतना महायज्ञ रचवाया, ये मैंने अपनी आंखों से देखा। जरूर मेरा भी कोई गुप्त सौभाग्य था, मैं भी अपने आप को नहीं जानती थी। तो मैं थोड़ी सी हिस्ट्री ये सुनाऊंगी कि हैदराबाद सिंध में मेरा जहां घर था वहां मेरे बाजू में ही बाबा का घर था, इसलिए बाजू में पड़ोस के नाते से बाबा के घर में जब कभी कोई बड़ा बड़ा कार्य होता था तो हम बाबा के घर में बाल्यावस्था में चले जाते थे। और बाबा के घर में सात्विकता बहुत थी, भक्ति भाव बहुत था, धनवान तो बहुत दिखे, हैदराबाद सिंध में धनवान बहुत, परंतु धनवान फिर निर्माण और फिर सेवा भाव वो बाबा के घर में देखा। तो बाल्यावस्था में भी बाबा के घर के अंदर आने से कुछ विशेष बातें नजर आती थी, सारे परिवार के अंदर भक्ति भाव बहुत अच्छा था और उसके कारण सारे घर में और सारे शहर में बाबा के घर का नाम वाला था, क्योंकि बाबा दान धर्म करने में भी बहुत रुचि रखते थे,
गरीबों की सेवा करने में भी रुचि रखते थे और भक्त थे कृष्ण के, गीता के बहुत प्रेमी थे और गुरुओं में अटूट श्रद्धा थी, अटूट। तो जीवन में 12 गुरु किए थे। इसी लक्ष्य से तो मुझे ऐसा कोई गुरु मिल जाए जो मुझे भगवान का दर्शन करावे। तो चुन चुन के जो उच्च कोटि के गुरु माने जाते थे उनको बाबा ने अपना गुरु बनाया। लेकिन गुरु बनाने पर भी बाबा को जब साक्षात्कार नहीं हुआ, भगवान का दर्शन नहीं हुआ, तो बाबा निराश हो गया। फिर भगवान के ऊपर अपना अधिकार जमा दिया कि अब तो तू ही अपना साक्षात्कार कराएंगे, अभी मैं तुम्हारे पीछे पीछे घूम रहा हूं, तुम दर्शन नहीं देते हो, हक से अधिकार से भगवान के ऊपर छोड़ा, अब तुमको ही अपना दर्शन कराना होगा। ये भक्ति का हठ होता है। खैर 7 साल की उम्र में ये बाबा का इस तरफ से लगाव बढ़ गया। फिर भी वो कलकत्ता में बहुत बड़ा ज्वेलर था, राजाओं रानियों में बाबा को बहुत मान प्राप्त था, राजाएं भी उनको बहुत प्यार करते थे कि इनके पास धन तो बहुत है पर धन के साथ भक्ति भाव भी है। कभी बाबा ने अशुद्ध खाना नहीं खाया था, चाहे राजाओं रानियों के पास बड़ी बड़ी पार्टियों में बाबा को जाना पड़ता था, लेकिन बाबा मुस्कुरा करके कहता था, आप हमको क्या देते हो, आप तो कागज के टुकड़े देते हो, मैं तो फिर भी आपको हीरा देता हूं, तो मैं अपना धर्म नहीं छोड़ सकता हूं। तो भले वो खाना खाते थे अपने ढंग का, लेकिन बाबा के आगे फ्रूट रखते थे तो बाबा हमारे साथ बैठ करके खाना खाए। तो फिर भी उस समय में तो बाबा में वो ज्ञान की ताकत तो थी नहीं, तो बाबा उस समय उनके साथ खाते थे उनको खुश करने के लिए, ग्राहक थे उनके। परंतु बाबा अपने धारणाओं में अपने नियमों में बहुत ही पक्के थे। तो लगभग 7 वर्ष की आयु तक ये सब बाबा की प्रवृत्तियां रही हैदराबाद सिंध में, और कलकत्ते में वो ज्वेलर था तो कलकत्ता से टाइम निकाल करके अपने ग्राहकों से मिलने के लिए वो मुंबई में आया करता था, आया जाया करता था। तो एक बार मुंबई में बाबा अपने मित्र के मकान में रहा, वहां गीता का सत्संग रोज होता था। तो गीता का ज्ञान सुनते सुनते अचानक ही सभा में गुम हो गए, आंखें बाबा की बंद हो गई। तो जब सभा पूरी हुई, कथा करने वाला भी चला गया, तो सभी लोग उठे, बोला हम सभी उठे, पर लखीराज बाबू तो नहीं उठा है, पता नहीं लखीराज बाबू को आज क्या हो गया है। तो बाबा का चेहरा देखा तो बहुत खिला हुआ था, अंदर प्राप्ति थी, पहली बार बाबा को अंदर विष्णु का साक्षात्कार हुआ। फिर साक्षात्कार के बाद उसको वरदान मिला कि अहम विष्णु तत्त्व। वरदान मिलते ही बाबा की लाइफ में उसी समय उसी सेकंड चेंज आ गई। चेंज ऐसा है जो बाबा को महसूस हो रहा था कि मेरे अंदर कोई शक्ति है जो मेरे आंखों के द्वारा दूसरों को देखती है, आंखें मेरी हैं, मैं किसी को नहीं देखता हूं लेकिन लोगों से पता लगता है। लोग कहते हैं बाबा आपने हमको दृष्टि दी, बाबा आपने जो इसको दृष्टि दी एक सेकंड में हमको भी दृष्टि दो। तो बाबा कहते बच्चे मैंने नहीं दृष्टि दी, सभी कहने बाबा आपने दी, बाबा के मैंने नहीं दी, क्योंकि आंखें बाबा की थी पर गुप्त में प्रवेशता परमात्मा की थी। इसलिए जब बाबा सभा के बीच में बैठे थे, जिस किसी को बाबा दृष्टि देता है वो सामने वाला ध्यान में चला जाता है, उनको भी दिव्य साक्षात्कार होता है। इधर देखा उधर देखा उधर देखा तो ध्यान में चले जाते थे। तो बाबा को आश्चर्य लगा, ये सब क्या हो रहा है, मैं तो मैं हूं पर ये क्या हो रहा है। तो लगातार लोगों ने बाबा से बातें करना शुरू कर दिया, बाबा से बाबा का अनुभव पूछना शुरू कर दिया। तो बाबा ने कहा कि देखो मैं तो कुछ नहीं कर रहा हूं, मुझे कुछ हो रहा है ये मैं फील करता हूं। पहले मुझे ऐसा विष्णु भगवान का साक्षात्कार हुआ जिंदगी में पहली बार, न मैंने सोचा न मैंने समझा, परंतु साक्षात्कार हुआ। उसके बाद मुझे विष्णु भगवान के द्वारा एक वरदान मिला कि अहम विष्णु तत्त्व, तू मेरा ही स्वरूप हो। उसके बाद मैं अपने लाइफ में चेंज देख रहा हूं, मैं देख रहा हूं मेरी आंखें हैं परंतु मैं अपने आंखों से नहीं देख रहा हूं, कौन सी शक्ति देख रही है जो सब मेरे तरफ देख रहे हैं।
लोग कहते हैं ये दिखता, मैं कहता हूं मैं नहीं दिखता हूं। तो बाबा में एक विशेष गुण था सच्चाई का, भक्ति तो थी थी पर सच्चाई का गुण नंबर वन था। कुछ भी हो जाए बाबा ने अपनी जिंदगी में झूठ कभी नहीं बोला होगा। चोरी तो एक बहुत बड़ी बात हो जाती है, बचपन से लेकर के बाबा के अंदर ये संस्कार नहीं थे। और भक्त होने के कारण भगवान में एक भावना भी और एक भगवान का भय भी रहता है कि ऐसा कोई काम न करे जो भगवान मेरे ऊपर नाराज हो जाए। इस तरह से बाबा अपने प्रवृत्ति में चला और मुंबई में बहुत बाबा को ऐसे अच्छे अच्छे अनुभव हुए। फिर बाबा वहां से छुट्टी लेकर के हैदराबाद सिंध में आए। घर वालों ने देखा बाबा की लाइफ में तो चेंज आ गई है, बाबा का उठना बैठना, परिवार में पुत्रों में मोह था बाबा का, गले लगा करके उनके लिए बहुत बड़े बड़े स्वीट के बॉक्स लेके आते। आज बाबा मुंबई जैसे शहर से आया, बच्चों के लिए पोतरों के लिए कुछ भी नहीं लेके आया और ऐसे आया जैसे बाबा इस घर से न्यारा है बिल्कुल। तो सभी बाबा की चाल ढाल को देखने लगे, तब तक उनको पता लग चुका था। फिर बाबा से बाबा का अनुभव पूछा, बाबा ने कहा बच्चे मुझे ऐसे लगता है कि कोई बड़ी शक्ति है जो मुझे अपने तरफ खींच रही है, वो मेरे से क्या कराने चाहते हैं मैं नहीं जानता हूं, परंतु मुझे लगता है कि कोई मान शक्ति मेरे पीछे है जो मुझे खींच रही है अपने तरफ खींच रही है। इसलिए मैं आप सबसे भी छुट्टी लेके मैं एकांत में जाना चाहता हूं और इन सब बातों की खोज में रहूंगा कि वो कौन सी शक्ति है, वो मेरे से क्या करानी चाहती है। तो बाबा घर वालों से छुट्टी लेके बनारस में चले गए। तो बनारस में बाबा के भागीदार की कोठी थी, बहुत बड़ा बाग था, एकांत ही एकांत थी। तो बाबा वहां रहे हैं, रात्रि को सोए हुए हैं, तो उसको अचानक ही भगवान से आवाज मिला, उठो जागो उठो जागो। तो बाबा की आंख खुली तो कोई व्यक्ति तो है नहीं, किसने ये कहा उठो जागो। तो बाबा को ध्यान में आया कौन है ऐसा, ये सारा कमरा प्रकाश से भरपूर हो गया है, ये कौन सा प्रकाश है, ये कहां से आ रहा है। तो वो तो ईश्वरी प्रकाश था, ये प्रकाश तो था नहीं। फिर बाबा दरवाजा खोल करके बाहर बगीचे में चला गया। तो बगीचे में जाकर के एक ऐसे स्थान पर बैठा, जहां बैठा ही तो उनको भगवान ने फिर ऐसी दृष्टि दी जो बाबा गुम हो गए। फिर उनको कलयुगी सृष्टि का मां विनाश परमात्मा ने दिखाया। कैसे दिखाया कि भारत के अंदर कैसे सिविल वार के द्वारा हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई कैसे दे के धर्म ब्याह करके कैसे लड़ झगड़ तक की नदियां बह रहे। बहुत ही दर्दनाक दृश्य देखा। फिर दूसरी सीन देखी, कुदरती आते हैं, कहीं बाढ़ है कहीं भूकंप है, कहां भूखापन कहां सूखापन, जो आज आप प्रैक्टिकल में देख भी रहे हो, देश में बीच बीच में ऐसे होता भी रहता है। तो कैसे मनुष्य मरते लड़ते झगड़ते, कोई पानी में डूब रहा है, कोई धरती के अंदर समाया जा रहा है, कोई समुद्र में। तो एकदम विचित्र दृश्य देख करके बाबा घबरा गया, बाबा का बदन कांपने लगा। अब भगवान को चिल्लाने लगा, हे प्रभु बचाओ बचाओ, इतना भारी विनाश। तो बाबा को लगा ये रियली हो रहा है। कुछ समय के बाद जब बाबा होश में आए, तीसरी सीन में देखी तो ऊपर से बॉम्ब्स की वर्षा गिर रही है, इतने बॉम्ब्स गिरते जा रहे हैं सृष्टि के ऊपर, सारी सृष्टि की तबाही हो गई खत्म। वो दृश्य देखते ही बाबा बिल्कुल ऐसा पानी पानी हो गया, घबराया हुआ है, बदन कांप रहा है। तो बाबा को थोड़े समय के बाद जब बाबा होश में आया तो बाबा ऐसे ऐसे करके देखता है, तो जितना बड़ा बाबा ने विनाश देखा यहां तो एक दर तक की बूंद भी नहीं है, कोई मारकुट नहीं, कोई हथियार नहीं, कोई दुश्मन सामने खड़ा नहीं है। तो ये सब मैंने क्या देखा, क्यों देखा, मैं सोया हुआ नहीं हूं, बगीचे में बैठा हुआ है साधना के रूप में, ये किसने दिखाया और क्यों दिखाया। बाबा का क्वेश्चन उठा, ये किसने दिखलाया। तो बाबा का ध्यान गया भगवान में, ये जरूर मुझे भगवान ने दिखाया है, इतना महाविनाश दिखाया है तो जरूर कुछ होने वाला है।
एकदम से बाबा को बैठ गया जरूर कुछ होने वाला है, तब परमात्मा ने मुझे दिखाया है। फिर बाबा डीप साइलेंस में बिल्कुल अंतर्मुखी, दुनिया का कुछ भी अच्छा नहीं लगता है, न खाना न पीना न सोना, सब सुख के साधन सब खत्म हो गए, बस इसी चिंतन में कि ये क्यों देखा, अब क्या मुझे करना है। फिर भगवान से उसको आवाज मिलता है, उठो जागो, कलयुगी सृष्टि का ये सृष्टि है ना, उसमें भी ये कलयुग की सीन सीनरी चल रही है, सत्युग का जमाना तो नहीं है, आप तो कहेंगे नहीं है, राम राज भी नहीं है, त्रेता युग का राज भी नहीं है, द्वापर में भक्ति भाव होता है वो भी नहीं है, कलयुग काला युग है, मार कुट लड़ाई झगड़ा स्वार्थ भावना, परिवार है तो स्वार्थ भावना है, स्त्री की पति में, पति की पत्नी में, बाप की बेटे में, बेटे की बाप में, सब में स्वार्थ भावना, स्वार्थ बिगड़ कोई सेवा करता ही नहीं है। तो ऐसी दुनिया जो कलयुगी है उसका महाविनाश होने वाला है, तो परमात्मा ने उसको इन एडवांस दिखा दिया, इस प्रकार से कलयुग का विनाश होगा। फिर उसके बाद कौन सा युग आएगा वो भी भगवान ने उसको बता दिया कि कलयुग जाने वाला है और सत्युग आने वाला है, तो अभी उठो जागो, तुमको विश्व का कल्याण करना है, तुमको विश्व का कल्याण करना है। बाबा गहरी सोच में पड़ गया कि विश्व का कल्याण, प्रभु जी मैं कैसे करूंगा, वो अपने आप को समर्थ तो देखता नहीं है, मैं कोई समर्थ हूं, मेरे पास कोई ज्ञान योग की शक्ति है, वो तो एक भक्त आदमी था, साधारण जीवन जैसे होती है, तो अभी ये भगवान का आदेश मिला है तुमको विश्व का कल्याण करना है, तो प्रभु जी मैं कैसे करूंगा, मुझे दिव्य बुद्धि दो, मुझे दिव्य शक्ति दो, जो मैं आपके इस संकल्प को साकार कर सकूं। तो बाबा भगवान के याद में खो जाता था, बातें बातें भगवान से करने लग जाता था, न खाता है न पीता है। फिर धीरे धीरे करके भगवान का डायरेक्शन उसको मिलने लगा, अब तुमको क्या करना है। फिर परमात्मा ने उसको आदेश दिया, उठो जागो, तुमको अब क्या करना है, वो डायरेक्शन दिया, तन मन धन सब ईश्वरी कार्य के लिए समर्पण करना है। अब ईश्वरी कार्य आरंभ तो हुआ नहीं था, आरंभ इनके द्वारा ही होने था, पर उससे पहले बाबा को समर्पण करा दिया परमात्मा ने। इतना बड़ा ज्वेलर चालू धंधा कौन छोड़ सकता है, कोई पांच कोड़ी भी नहीं छोड़े, पर बाबा को जो निश्चय बैठ गया, भगवान ने मुझे ये आज्ञा दी है, मुझे करना ही है, तो सीधा कलकत्ता में चला गया। कलकत्ता में जाके अपने भागीदार को अपना अनुभव सुनाया और बोला अब मुझे ये काम करना है, इस धंधे को मैं छोड़ने आया हूं, बिजनेस का जो हिस्सा है मेरा वो हम इससे करवा करके मैं ईश्वरी काम में लगाऊंगा। तो अपने भागीदार को फायदा देके बिजनेस से अपना हिस्सा निकाल दिया। तो उससे पहले 1936 में यज्ञ रचा, उससे पहले दो साल पहले ये सारा धंधा दोरी समाप्त करके फिर बाबा हैदराबाद सिंध में आए। कलकत्ते में धंधा था, राजाओं में बहुत उसको मान प्राप्त था, लेकिन ये मान शान सब दुनिया का सब छोड़ करके, ये धन भी हीरे जवाहर सब मट्टी में मिलने वाली है, इसका मतलब ये सब झूठे, अब मैं झूठे रत्नों का धंधा नहीं करूंगा, अब मैं सच्चे सच्चे रत्न भगवान से लेके वो मैं धंधा करूंगा। तो हैदराबाद सिंध में अपना बिजनेस समाप्त करके आया हैदराबाद सिंध में, तो घर वाले भी वैसे बाबा के जीवन से, बाबा की धारणाओं से, बाबा के विचारों से बहुत प्रभावित थे, तो उन्होंने सोचा कि ये बाबा कह रहा है, बाबा को भगवान कह रहा है और वो मानता है कि भगवान ने मुझे ये कहा है, मुझे करना ही है, तो किसी ने भी रोका नहीं बाबा को, जो आपको भगवान का हुक्म है हमको मंजूर है, हम भी आपके साथी हैं। तो सब ने दस्तखत करके बाबा को दे दिया, हमारा कोई भी उस धन पर अधिकार नहीं है। तो बाबा की स्त्री तो थी पर उनके साथ दो बहुआ थी और दो बच्चियां, तीन बच्चियां थी, दो बड़े बच्चे थे, एक शायद एक बड़ा था एक छोटा बच्चा था, बहन थी भाभी थी, एक छोटा सा परिवार था, सबके सब सरेंडर हो गए।
सब प्रभावित। और बाबा का जीवन प्रत्यक्ष था, यानी कहने की बात नहीं, प्रत्यक्ष बाबा का चेहरा बोलता था कि ये इस लखीराज बाबू का चेहरा नहीं है, ईश्वरी चेहरा, जैसे ईश्वर पिता देख रहा है। कशिश होती थी रूहों को, सारे परिवार में जितने भी आते थे ना, सबको बाबा के चेहरे से ही एकदम जैसे आनंदित होकर उठते थे, जैसे उनको परम पिता परमात्मा का प्यार मिल रहा है दृश्य से। और कई तो ध्यान में चले जाते थे, ट्रांस में चले जाते थे। प्रत्यक्ष प्रमाण, भगवान आता है तो कैसे, जिसमें आता है उनका भी दिव्य साक्षात्कार कराता है। तो पहले का नाम तो बाबा का दादा लेखराज था। अब देखो लेखराज के जीवन में कैसे परिवर्तन आना शुरू होता है। फिर हैदराबाद सिंध में आए तो घर वालों ने देखा, चमत्कार देखा, घर वाले सब प्रभावित, शहर में आवाज फैल गया, बहुत बड़े बड़े लोग आए, क्योंकि बाबा भी ज्वेलर था, कम नहीं था, तो सब बाबा के बड़े बड़े रिश्तेदार थे, सब बाबा को देखने के लिए आए। सबने देखा तो बाबा का रूप बदल गया है, बाबा का काम बदल गया है, इतना बड़ा ज्वेलर और दुकानी छोड़कर किया गया है, तो इनके पीछे कोई गुप्त शक्ति है जो ये कार्य करा रही है। तो बहुत हमारे जैसी बहनें जल्दी सरेंडर हो गई, निश्चय बैठा और हमने ये किया कि अब हमको ये काम करना है, हमको बाबा को पूरा साथ देना है इस ज्ञान में। तो मेरे जैसी तो बहुत थी, मैं भी छोटी थी, बाल अवस्था में थी, पर बाल अवस्था में जो अनुभव हुआ उससे हमको लगा कि हमको हमारा सच्चा पिता मिल गया। फिर तो हम हैदराबाद सिंध में आए, और हम हैदराबाद सिंध में थे, बाबा हैदराबाद सिंध में आया, फिर बाबा को एक और दिव्य साक्षात्कार हुआ कि कलयुग जाने वाला है, फिर कौन सा युग आएगा, आप सभी आवाज दो, क्या कहेंगे, कलयुग जाएगा फिर कौन सा युग आएगा,
सतयुग आएगा,
कौन बोलता है, एक दो भाई बोलते हैं, ये माताएं तो बोलती
हैं, पूछ रही हैं कलयुग के बाद कौन सा युग आएगा,
मानते हो आप सभी, आप मानते हो सभी, हाँ जी बोलो, तो कलयुग जाने वाला है। जैसे रात जाएंगी तो मैं पूछूंगी भाई रात पूरी होंगी फिर क्या होगा, आप फट से बोलेंगे दिन आएगा, ऐसे कलयुग जाएगा तो फिर कौन सा युग आएगा, तो जरूर कहेंगे सतयुग आएगा। तो सतयुग कैसा होता है, सतयुग में क्या क्या होता है, ये भगवान ने उसको दिव्य दृष्टि में दिखा दिया। लक्ष्मी नारायण की राज दरबार, हीरे रतन जर्त महल लगे पड़े हैं, चारों ओर हरियाली है, नदियां बह रही है, सुंदर महल, रतन जर्त महल सबके बने पड़े हैं, ऐसा सुखमय संसार परमात्मा ने उसको दिखा करके फिर आज्ञा दी है, उठो जागो, तुम्हें ऐसा सुखमय संसार बनाना है। अब सुखमय संसार, जिसने खुद भी सुख का ऐसा अनुभव नहीं किया, और भगवान ने अब आज्ञा दी है कि तुमको ऐसा सुखमय संसार बनाना है, तो बाबा को मीठी चिंता लग गई, प्रभु से बातें करने लगा, प्रभु जी मैं कैसे बनाऊंगा, मेरे पास तो कोई बुद्धि है नहीं, मेरे को कुछ ज्ञान ध्यान है नहीं, तो मैं ऐसा सुखमय संसार, देवताओं का संसार कैसे बनाऊंगा। अब परमात्मा ने उसको मर्जीवा बना दिया, कंप्लीट चेंज हो गया उनके लाइफ में, एकदम चेंज आ गई। कल तक तो वो दादा लेखराज था, उनका परिवार था, परिवार में मोह था, प्यार था, सब कुछ उनके प्रति था, और आज वो बेहद का बाप बन गया, सारे संसार के लिए प्यार बाबा को अंदर से पैदा होता था कि सारे संसार को मुझे जगाना है, सारे संसार को ये ज्ञान देना है, मुझे बाप ने कहा है तुमको विश्व का कल्याण करना है। तो धुन लग गई सब घर वालों को, लगाता है कि अब तुमको जहां भी जाओ, जो परमात्मा मुझे ज्ञान दे रहा है मैं तुम्हें देता हूं, इस ज्ञान को तुम फैलाते रहो, जहां भी जाते हो, जो भी तुम्हारे रिश्तेदार है, मित्र है, तेरे पास आते हैं, तुम और खातरी करते हो, पर ये ज्ञान की खातरी करो। तो घर घर में जैसे ये ज्ञान की ज्योति जग गई, तो जैसे घर घर में ज्योति जग गई, हमारी लाइफ में चेंज आ गई। हम सिंध की कुमारियां थी तो सिंध में तो सब खाते थे, पीते थे, ऐश अशरत बहुत था, विलायत का पैसा आता था, विलायत की चीजें आती थी घरों में, इसलिए विलायत का प्रभाव था सारे सिंध में, अब जब ज्ञान लिया तो अंदर की धारणाएं सब चेंज हो गई। गंदा खाना छूट गया, फैशन छूट गया, प्याज लहसुन तक भी सब छूट गया। बस हमको लगा कि हमको देवता बनना है, अब सत्युग में जाना है। सत्युग में जाना है तो हमको शेष कर्म करने हैं, मन को शुद्ध बनाना है, और अपने परिवार में रहना है तो सभी को शुद्ध बनाते रहना है, अशुद्ध संग में नहीं रहना है, अशुद्ध बातों से भी दूर। हम कहते हैं जैसी धरनी वैसी करनी होती है, जैसा संग वैसा रंग, जैसा पियो पानी वैसे हुए बानी, जैसा अन्न वैसा मन। तो इन चार चीजों की हमने संभाल कर दी। अन्न शुद्ध हुआ, संग शुद्ध हुआ, रोज सत्संग में जाते थे सुबह या शाम को, या घर में भी सत्संग करते थे, ऊपर छत पर जाके चिंतन करते थे। सत्संग में नहीं जा सकते हैं तो मनन चिंतन के जरिए भी सत्संग करते रहते थे। लाइफ में बहुत चेंज आ गई, दृष्टि बदल गई है। सब हमारे भाई है, क्योंकि ईश्वर पिता के बच्चे हैं। ईश्वर हमारा सच्चा पिता है, उनके ये सब बच्चे हैं, तो हम सब आपस में भाई और बहन हैं। तो पाकिस्तान के अंदर हम पहले हिंदुस्तान हैदराबाद में थे, तो उसमें मुसलमान लोग भी थे, आगे पीछे मुसलमान है। इस तरफ हमारा घर है तो पीछे मुसलमानों का घर, नीचे मुसलमान रहते हैं, दुकान मुसलमानों के, गलियों में मुसलमान रहते हैं। तो डर रहता था मुसलमानों से, अभी मुसलमानों से डर निकल गया। अब ऐसा लगा ये भी तो हमारे भाई है ना, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई, हम सब आपस में भाई भाई है। तो हमारे को जो पहले भय था, जो डर था, वो निकल गया। दिल में आया ये भी हमारे सच्चे भाई है, हमारी भावना अच्छी है तो उनकी भावना हमारे प्रति जरूर अच्छी रहेंगी। तो ऐसे चेंज हमारे विचारों में भी चेंज आई, आचरण में भी चेंज आ गई, फिर हमारा सब कुछ बदल गया। फिर हम चलते रहे चलते रहे। फिर आपको पता है कि अगर एक कोई चलता है घर से और दूसरा नहीं चलता है तो थोड़ी गड़बड़ होती है, अगर दोनों चलते हैं तो घर स्वर्ग बन जाता है। अभी इतनी माता है पहली बार, इससे पहले भी दो तीन ग्रुप में आई है माताएं बहनें बहुत, परंतु शुरू में तो परिवार से एक बहन आती तो भाई नहीं आता, मां नहीं आती, बाप नहीं आता, तो शुरुआत में ऐसे ही था। इसलिए जो एक आता था उसके पीछे सारा परिवार पड़ जाता था कि ये नया ज्ञान है, ये नई बातें हैं, दादा लेखराज को पता नहीं कहां से ज्ञान आया, उसने ये सब ढोंग रचा है। तो दो लोगों के भिन्न भिन्न आवाज उठे। फिर बाबा के सामने बहुत परीक्षाएं आई समाज की तरफ से, समाज ने अनेक प्रकार के विघ्न डालने शुरू किए, बल्कि यहां तक बाबा को खत्म करने के लिए भी प्लान बनाए, परंतु उनका कोई भी प्लान कामयाब नहीं हुआ। जो भी आते थे उनको चमत्कारी दिखाई पड़ता था, बाबा के आगे आकर के भी एक चमत्कार में आ जाते थे तो उनका हाथ काम नहीं कर सकता था। तो ऐसे कई बार हुआ। तो हैदराबाद सिंध में एक तरफ हंगामा बहुत सारे शहर में, और दूसरी तरफ हम नई दुनिया की स्थापना में हम सैकड़ों भाई बहने लग गए। तो हमारे रिश्तेदार हमसे नाराज, हम अच्छे बनते जा रहे हैं उनको बुरा लगता है। तो हम क्या करें, जो हमको अच्छी चीज लगती है, जिसे हम सुधर रहे हैं अंदर, मन में शांति, मन में प्रेम, मन में सद्भावना, अब हमारे पेरेंट्स कहते हैं तुम नहीं जाओ, तो हमारा मन तो नहीं मानता है। इसलिए बंधन में डाला, कोठों में बंद किया, छह छह दिन खाना नहीं खाया होगा। हम एक बात के पक्के रहे कि नहीं, हमको तो वहां जाना है, आप छोड़ेंगे तो भी जाएंगे, न छोड़ेंगे तो भी आज नहीं तो कल। हम कोई पंची थोड़ी है जो तुम सारा उम्र बंद करके बैठेंगे, हम अपना छुटकारा आप ही करेंगे। तो हुआ भी ऐसे, थोड़ा समय ये चला हमारे साथ परीक्षाओं का पीरियड, तो एक साल ऐसी परीक्षा हमारे सामने आई। फिर हमने रिश्तेदारों की सेवा की, जो मेरे बड़े बड़े थे जिनका बंधन था, उनको बुला करके उनसे बात करना, उनको समझाना, उनको अपने लाइफ का अनुभव सुनाना, तो सबके सब प्रभावित हो गए। फिर हमारी माँ को कहने लगी, तुम इसको क्यों बंधन में डालती हो, समाज कुछ भी कहे, तुम्हारी बच्ची बिगड़ रही है या सुधर रही है ये तुम देखो ना। अगर तुम्हारी बच्ची सुधर रही है, भगवान के रास्ते में लग रही है, फिर हम इनको विघ्न क्यों डालती हो, क्यों तुमको मारती हो, पीटती हो, कोठों में बंद करती हो। پھر ہمارے رشتہ داروں نے سب نے مل کر کے ہماری ماں کو سمجھایا, ایسے اوروں نے بھی اوروں کو سمجھایا, کیونکہ ہم کافی ساری بہنیں تھیں, سب کو گھر گھر کا بندھن پڑنے لگا. اور ہم اپنے نشچے میں پکے, مریں گے مٹیں گے, بھگوان کے بنے ہیں, بھگوان کی آگیاؤں کا ہم پالن کریں گے. ہم ستیوگ میں جائیں گے, ہم کلیوگ میں نہیں رہیں گے. ایک دم ایسا لگتا تھا جیسے کہ ستیوگ کوئی اور دنیا ہے جہاں ہم کو جانا ہے, ہم کو اس دنیا میں نہیں رہنا ہے. تو 1937 میں اس مہا ودیالیہ کا نرمان ہوا. بابا نے تن من دھن سے سب سرینڈر کر کے ایک کنیاؤں ماتاؤں کی ٹرسٹ بنائی, ان کے نام پر بابا نے اپنا تن من دھن سوا کر دیا. تو 1937 سے اس کا کاری چالو ہو گیا, ماتاؤں کے دوارا یہ ستسنگ. بابا کو ایشوری وانی ملنے لگی. بابا تو اتنا پڑھا لکھا تھا نہیں, گرنتوں کا گیان تھا تھوڑا بہت. اب بابا ایکانت میں بیٹھا ہے تو بابا کو ایشوری وانی ملتی ہے اوپر سے. بابا کو لگتا ہے کوئی شکتی مجھے پڑھا رہی ہے, کوئی شکتی میرے تن میں پرویش ہو جاتی ہے, پھر چلی بھی جاتی ہے, آتی بھی ہے. یہ سب کیا ہو رہا ہے؟ تو بابا تو انترمکھی ہو گیا. بہت بہت باہروں پر جا کر کے ایکانت میں اپنے آپ کو دیکھتے تھے یہ سب کیا ہو رہا ہے. تو بابا کو چمتکاری چمتکار دکھائی پڑتا تھا, کوئی شکتی ہے جو کام کرا رہی ہے. تو پھر حیدرآباد سندھ میں بابا کا جب آنا ہوا تو بابا نے دیکھا تو میرے ایبسنٹ میں اتنا بڑا ستسنگ ہو گیا ہے, کنیاؤں ماتاؤں کے دوارا ستسنگ بڑھ گیا ہے. صرف اوم کی دھنی شروع کرتے تھے تو اوم کی دھنی میں اتنا رس آتا تھا, سب لوگ بیٹھ جاتے تھے, سب کو بڑے اچھے اچھے انبھو ہوتے تھے. تو 1937 میں اس کی استھاپنا ہوئی. پھر بابا استھاپنا میں بہت لوگوں نے وگھن ڈالا. وگھن تو ڈالتے ہیں, ڈالنا بھی چاہیے, ہماری پریکھیا بھی ہونی چاہیے. تو پھر کراچی میں بابا کو, بابا کی کراچی میں ایسے بچے تھے, بھاوان تھے, نشچے بدھی تھے, انہوں نے بابا کو نمنترن دیا کہ آپ تھوڑے سمے کے لیے حیدرآباد سندھ کو چھوڑ کے آپ کراچی میں آ جائیں. کراچی بڑا شہر تھا. تو بابا ہم بچوں کو کراچی میں لے کے گیا, جن کو پیرنٹ سے چھٹی ملی ان سب کو لے کے گیا. پھر ہم سب وہاں کراچی میں رہے. 10-12 سال ہماری تپسیا سادھنا گیان یوگ کی پڑھائی وہ ہم کرتے رہے. 10-12 سال سمجھے وہاں رہے, کل ہمارے 14 سال ہوتے تھے. تو اس کے بعد پھر کراچی میں پالنا لے کر کے شکتی شالی اوستھا کا انبھو کر کے پھر بابا نے کہا اب تم کو ساری جنتا تک یہ آواز پہنچانا ہے, جو انبھو کیا ہے جو گیان لیا ہے وہ بانٹنا ہے. تو بانٹنے کے لیے تم کو انیہ استھانوں پر جا کر کے یہ سیوا کرنی ہے. تو سب سے پہلے دہلی, اجمیر, جے پور, راجستھان کی طرف ہمارا نکلنا شروع ہوا. پھر سیوا کرتے 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 جہاں سیوا کرتے تھے وہاں سینٹر کھل جاتا تھا. ایک ماہ سیوا کی تو وہ کہتے ہم چھوڑیں گے نہیں, ہم یہاں الگ مکان لیتے ہیں, آپ الگ ہی رہو اور پکاؤ کھاؤ شدھی پورک, اور ہم آپ کو پورا ساتھ دیں گے, ہم سب کچھ آپ ہی کریں گے. تو جہاں جہاں گئے وہاں وہاں سینٹر کھل گیا, جہاں جہاں گئے وہاں ہمارا سینٹر کھل گیا. ایسے کرتے کرتے سینٹر تو بہت کھل گئے. پھر بھی جب پتا شری تھے حاضر تو ہم نے بابا کو بتایا, بابا ابھی 200 سیوا کیندر کھل گئے ہیں. تھوڑے سمے کے بعد کہ بابا ابھی 300 سیوا کیندر کھل گئے ہیں. تو بابا کہتے بس. تو ہم کہتے اتنے سیوا کیندر کھلے, پھر بھی بابا کہتے بس. تو کیا کرنا ہے بابا, ابھی اور کھلنا ہے. بابا کہتے ہیں بچی تم کو تو سارے وشو کا کلیان کرنا ہے, دیش ودیش میں تمہارے سیوا کیندر کھلیں گے, دیش ودیش کے بچے یہاں آئیں گے. تو ہم تو چکر تو ہو جاتے تھے, دیش ودیش میں کہ لوگ کیسے آئیں گے, ہم بھاشا نہیں جانتے, ہم ودیش میں جا نہیں سکتے ہیں, انگلش ہی نہیں جانتے ہیں, پلین کبھی نہیں دیکھا, ٹرین کبھی نہیں دیکھی. اور بابا کہتے ہیں تم بچے ودیش میں جائیں گے, کون جائے گا, کوشچن اٹھتا تھا. لیکن آج کے تاریخوں میں, آج سے 20 سال پہلے یہ سب باتیں نراکاری روپ میں تھی, چھپی ہوئی تھی. آج تاریخوں میں ہم دیکھتے ہیں 20 سال کے اندر اندر مکان پچھاری مکان, مکان پچھاری مکان بھی بنتے جا رہے ہیں, سینٹر کھلتے جاتے ہیں. دیش تو کیا پرنتو ودیش میں بھی سیوا کیندر کھل گئے. ودیش کے 80 دیشوں کے اندر یہ بابا کا کاریہ چل رہا ہے. अब विदेश वाले लोग इसका पूरा पूरा लाभ लेते हैं, उनमें ग्रस्ती झंझट नहीं है। बच्चे तो जैसे पता नहीं है नहीं है कहाँ है, हमको तो पता ही, सब जैसे हल्के फुल्के, सेंटर खोलने में चलाने में सब में हल्के। तो सब जितने भी विदेश के देश है बड़े बड़े, उन सब में हमारा सेवा केंद्र चल रहा है, और वहां के लोग फिर सभी यहाँ आते हैं। साल में उनके लोग यानी 1200-1500 के लगभग यहाँ आते हैं, 15 दिन रह के फिर चले जाते हैं, फिर दूसरे आते हैं, फिर तीसरे आते हैं। तो ये भगवान का कार्य, भगवान की आज्ञा अनुसार हम देख रहे हैं, जो जो बाबा ने कहा था वो आज के तारीखों में हम देख रहे हैं। ये ईश्वरी चमत्कार है, ये दादा लेखराज का काम ही नहीं है। वो भी गृहस्थी और हम बच्चे भी संसारी आत्माएं, हमारे में शक्ति कहां से आएंगी? पर ये ज्ञान योग की शक्ति परमात्मा के द्वारा, परमात्मा निराकार है, शिव है। शिव बाबा ने ब्रह्मा को निमित्त बना के ये सारा कार्य चालू किया, उनको निमित्त बनाया, उसमें भी ये शक्ति नहीं थी। गृहस्थी आदमी था, बाल बच्चेदार था, चालू दुकान था हीरे जवत का, राजा और रानी में मान प्राप्त है, वो कहां इन धंधों में आएगा? परंतु भगवान ने निमित्त बनाया तो बस उनकी लाइफ ही बदल गई। नाम था दादा लेखराज, परमात्मा ने मर जीवा ऐसा बनाया, नाम भी बदल गया तो उसका काम भी बदल गया, उनके सब संस्कार भी बदल गए। कोई नहीं कहेगा ये दादा लेखराज है, उनकी स्त्री भी कहती है कि नहीं ये मेरा पति नहीं तो भगवान है, क्योंकि भगवान का ही अनुभव होता था। तो शिव पिता परमात्मा ने ब्रह्मा बाबा को निमित्त बना के ये सारा कार्य कराया, और कराते 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 देश विदेश तक बाबा के अनेक बच्चों ने नया जन्म लिया, नई धारणा बन गई, उनको कोई रोक भी नहीं सकता है। जिनका पाठ है सत्युग में चलने का, उनको कौन रोक सकता है? खुदा भी न रोके तो बंदा भी न रोके। तो ये स्थापना का कार्य बहुत जोरदार चल रहा है, देश विदेश तक ये आवाज पहुंचा हुआ है। तो बाबा ब्रह्मा को निमित्त बनाया शिव बाबा ने, तो वो शिव बाबा हुआ हमारा परलौकिक पिता, और ब्रह्मा बाबा हुआ हमारा अलौकिक पिता। वो परलौकिक पिता और वो अलौकिक पिता, तो हमारे दो बाप हो गए। तीसरा बाप जिसने जन्म दिया वो तो है ही है, और लौकिक बाप हम उसको कहेंगे। तो आज मैं अलौकिक बाप का परिचय दे रही हूं कि शिव पिता ने अलौकिक बाप को कैसे निमित्त बना के ये सारा कार्य करा है। अब उनका महावाक्य, बच्चे कलयुग जाने वाला है, गया कि गया, एक ही दिन में एक ही सेकंड में क्या से क्या हो जाता है, आप सब देखते रहते हो, अखबारों में पढ़ते रहते हो, तो एक ही सेकंड में कुछ भी हो सकता है। इसलिए हम समय का इंतजार न करें, समय से पहले अपन को तैयार करें, मनसा वाचा करना शुद्ध बने, कमी कमजोरी को भगा देवे, अज्ञान योग को धारण करें, अमृत वेले उठ के भगवान को याद करें, पवित्र बने, किसी से वैर विरोध नहीं, किसी की गिलानी नहीं, कोई दुश्मन हमारा नहीं, न हम किसी के दुश्मन बने, न लोभ रहे न मोह रहे। काम क्रोध लोभ मोह ये सब दुश्मन है हमारे, उनको हम ज्ञान और योग से जीत रहे हैं। जीतने में इतना टाइम तो लगा है, पर उनके साथ अनेक आत्माओं की सेवा हो रही है, अंदर वो पावर बढ़ रही है कि थोड़ा भी कोई संस्कार जागृत हो तो पता लगता है ये माया है, ये विकार है, इनको जीतना है। तो आप भाग्यशाली हो जो भगवान के घर में आए हो, और डायरेक्ट आपको यहाँ ये पालना मिल रही है। आपके गांव में हम कहाँ पहुंच सकते थे, इतने हजारों के बीच में हम कहाँ पहुंच सकते हैं, कहाँ बैठ करके वहां आपको ज्ञान सुनाएंगे, चलो एक घंटा क्लास करा के चले जाएंगे। लेकिन आपका आना रहना, पवित्र भोजन यहाँ, तो ये सब आपके भाग्य की निशानी है। तो मैंने अभी सार रूप में आपको बताया कि ब्रह्मा कुमारी नाम तब पड़ा जब परमात्मा ने बाबा को निमित्त बना के ब्रह्मा नाम रखा, ब्रह्मा प्रजापिता ब्रह्मा हो, इस युग का तुम युग पुरुष हो, तेरे द्वारा नए संसार का निर्माण करना है। तो परमात्मा ने ब्रह्मा को निमित्त बनाया, उसके मुख से जो ज्ञान मिला उस ज्ञान को हम बच्चों ने धारण किया, तो हम ब्रह्मा कुमार और ब्रह्मा कुमारी कहलाने लगे। नियमों का पालन, मर्यादाओं का पालन, धारणाओं का पालन, वो ही सच्चा सच्चा वो बाबा का बच्चा है जो भगवान के महावाक्यों के अनुकूल अपने जीवन को बनाता है। तो मैं आशा करती हूं कि आप सब आए हो तो जरूर है कि आप देवताई दुनिया के होंगे, स्वर्ग में पहले भी होंगे, तब तो स्वर्ग का ज्ञान ले रहे हो, और स्वर्ग का ज्ञान ले रहे हो तो जरूर स्वर्ग में पहुंचेंगे। ऐसी मैं आप सबके लिए आशा करती हूं। तो बुराई को छोड़ने में आपको अच्छा लगेगा, दिल से अपनी बुराइयों को छोड़ेंगे। हम आपसे कुछ नहीं लेते हैं, परंतु हम ये कहते हैं आपके पास जो 5 खोटे पैसे हैं ना, वो दान दे दो, जो आपके काम में नहीं आते हैं। कई कई आरती ना उतारते हैं ना, तो आरती में खोटे पैसे डाल के अपना खोटा डाल के और ही निकाल देते हैं पैसा। कई कई ऐसे ठग होते हैं। तो यहां पर बाबा के घर में खोटा तो चलता नहीं है, सच्चे दिल से अपना दान करना है बुराइयों का, आदतों का, जो गंदी आदतें हैं, जो उनको खान पान का अशुद्धता हमारे मन को अशुद्ध करती है, ऐसे खान पान को हम छोड़ करके शुद्ध भोजन खाती है, खिलाती है, खाते सब कुछ है, परंतु शुद्ध भोजन, संग भी शुद्ध, ऐसे के संग में बैठे जहां हमारी बुद्धि विपरीत न हो जाए, जो भगवान की याद दिलावे वो संग अच्छा, जो भगवान से बेमुख करे, गंदी बातें सुनाए, विकारों की बात सुनाए, उनके संग में बैठना भी नहीं चाहिए। तो इनकी परहेज रखिए, तभी आज हम चल सके इस दुनिया के अंदर। तो मैं आशा करती हूं आप सब भी अपने जीवन को ऐसा ही श्रेष्ठ बनाएंगे और आने वाले सत्युग में अपना सुंदर पार्ट प्ले करेंगे। अभी संस्कार भरेंगे तो आने वाले संसार में सुख शांति का स्वराज परमात्मा से पा करके आप भी सदा के लिए सुखी रहेंगे और आपके द्वारा अनेक आत्माओं को भी ये सुख शांति का रास्ता मिल जाएगा। ओम शांति।
प्रजापति।